ओम शांति। ये 10 नंबर के रजिस्टर में 129 पेज पर 27/2/91 का प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है। आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। ये अमर कथा कौन सुनाए रहे हैं? अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, तीजरी की कथा कहो, तीनों ही मुख्य हैं। अमर कथा किसको सुनाई गई? पार्वती को। तो पार लगाने वाली पार्वती को तो अमर कथा सुनाई गई, और सत्यनारायण की कथा ना लीलावती कलावती की जो भी कला है, वो कथा है, वो तो है, लकड़हारा लकड़ बगदा जो कुछ भी है, लेकिन वो सुनाई किसको गई? हैं? किसको?
भक्तों
को। सत्यनारायण की कथा जब सुनाते हैं तो पति पत्नी दोनों को गांठ बंधा के बैठाते हैं, गठबंधन करके। फिर सत्यनारायण की पंडित जी बैठ करके कथा सुनाते हैं, तो किन को सुनाई गई? युगलों को। के नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की कथा। बस तीजरी की कथा कहो। तीजरी क्या होती है? तीजियां क्या होती है? कोई को मालूम है? हैं? नहीं मालूम है? अरे कौशल्या माता को तो पता होगा तीजियां क्या होती है। नहीं मालूम है? जोर से बोलो जो इसमें भरे।
तीजरी सुनाई जाती है जो हम लोग तीजरी पहले करते थे।
पहले कब करते थे?
जब ज्ञान नहीं मिला।
जब ज्ञान नहीं मिला था तो कब से करते थे तीजरी की कथा? छोटी सी कन्याएं थी तब से। क्यों भी ना माता, तीजरी की कथा किसके लिए है? खास है, खास कन्याओं के लिए। तो कन्याएं तीजरी की कथा सुनती सुनाती हैं। हाँ, गौरी की कथा सुनाती, काली की नहीं सुनाती। तीनों मुख्य हैं, तीनों ही कथाएं मुख्य कथाएं हैं। अभी तुम किसके सामने बैठे हो? हैं? अमरनाथ के सामने बैठे हो कि सत्यनारायण के सामने बैठे हो के तीसरे नेत्र वाले के सामने बैठे हो? क्योंकि तीजिया तीजरी की कथा है, तीसरा नेत्र देने की कथा। और कौन तुमको सुनाए रहे हैं? सत्संग तो इसने भी बहुत किए। किसने? है इसने जो बाजू में बैठा है। किसने? ब्रह्मा ने। सत्संग तो इसने भी बहुत किए हैं। यहाँ तो सब मनुष्य देखने में आते हैं। उन सत्संगों में देखने में कौन आता है? मनुष्य। कहेंगे फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं, शिवानंद सुनाते हैं। भारत में तो ढेर सत्संग हैं। गली गली में सत्संग हैं। माताएं भी पुस्तक उठाए बैठ सत्संग करती हैं। तो वहां मनुष्य को देखना पड़ता है कहाँ है, कौन से सत्संग में? हाँ, जहाँ माता बैठ करके सुनाती है, देखना पड़ता है। किसको देखना पड़ता है? माता बैठ करके कोई सत्संग सुनाएगी तो देखेंगे किसको? वहाँ जो सत्संग होते हैं उनमें किसको देखेंगे? माता को ही देखेंगे। सन्यासी जी सुनाएंगे तो सन्यासी को देखेंगे, देखेंगे तो मनुष्य को ना, कि भगवान को देखेंगे? वहां तो भगवान है ही नहीं। तो यही समझते हैं कि फलाने सन्यासी ने, फलानी माता ने कथा सुनाई या फलाने पंडित जी ने सुनाई, मनुष्य को समझेंगे। और यहाँ क्या खास बात है, हैं? यहाँ तो वंडरफुल बात है। क्या वंडरफुल बात है? तुम्हारी बुद्धि में कौन है, मनुष्य है या भगवान है? तुमको कौन कथा बैठ सुनाते हैं? शिव बाबा ब्रह्मा की तरह में सुनाते हैं। परमात्मा तुम कहते हो कि परमात्मा सुनाते हैं, अभी बाबा सामने आया हुआ है, निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाला निराकार बाबा है।
अरे
निराकार ज्योतिबिंदु होता है, वो सुप्रीम सोल बाप होगा या बाबा होगा? हैं? सुप्रीम सोल ज्योतिबिंदु आत्माओं का बाप है या मनुष्यों का बाप है? आत्माओं का बाप है कि बाबा भी है? बाबा माने ग्रैंडफादर, बाप का बाप। आत्माओं का बाप है कि आत्माओं के बाप का भी बाप है? आत्माओं का तो सिर्फ कनेक्शन सुप्रीम सोल बाप से एक ही संबंध बनता है, दूसरा कोई संबंध बनता ही नहीं। तो यहाँ ये क्यों कह दिया कि निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं? हाँ, निराकार बाबा का मतलब है ऐसे नहीं, निराकार बाबा का मतलब कोई बिंदु पढ़ाते हैं। बिंदु कैसे पढ़ाएगा? बिंदु को आवाज कैसे निकलेगी बिना मुख के? तो निराकार बाबा का मतलब है कि निराकारी स्टेज में रहने वाला बाबा। पढ़ाते कौन है? निराकारी स्टेज में रहने वाला बाबा। ब्रह्मा को निराकारी स्टेज में रहने वाला कहेंगे?
नहीं।
क्यों? उनके जितने भी चित्र हैं वो धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज में नहीं है। जैसे धर्म पिताओं की आत्माएं ऊपर से उतरती है और उनके चेहरे ऐसे देखने में लगते हैं जैसे हाँ परम धाम में अभी भी बैठी हुई है। चाहे गुरु नानक का देखो, चाहे बुद्ध का देखो, चाहे क्राइस्ट का चेहरा देखो, चेहरा देखने से ही क्या पता पड़ता है? निराकारी स्टेज। मनुष्य कहेंगे वाह ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है, हैं? निराकार बाबा इनको कैसे पढ़ाते हैं? मनुष्य क्या कहेंगे? हैं? वो तो नाम रूप से न्यारा है, वो बिंदु कोई दिखाई थोड़े ही पड़ता है। बाप समझाते हैं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं है, ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है जो नाम रूप से न्यारी हो। और फिर टीचर कैसे होगा पढ़ाने वाला नाम रूप से न्यारा? टीचर को तो नाम रूप कोई होना चाहिए, तब तो पढ़ाई पढ़ाएगा। तुम बच्चे जानते हो यहाँ कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला कौन है, हाँ? साकार मनुष्य नहीं पढ़ाता है। ब्रह्मा क्या कहेंगे? ब्रह्मा को साकार मनुष्य कहेंगे। और कहाँ भी जाओ सारी वर्ल्ड में साकार ही पढ़ाते हैं। यहाँ तो सुप्रीम बाप है जिसको निराकार गॉड फादर कहा जाता है, वो निराकार साकार में बैठ पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं जिसमें बैठ पढ़ाते हैं वो कोई उसको शरीर है ही नहीं। शरीर तो है लेकिन स्टेज निराकारी। ये बिल्कुल नई बात हुई। जन्म बाई जन्म तुम सुनते आए हो ये फलाना पंडित है, ये फलाना गुरु है, ढेर के ढेर नाम है। भारत तो बहुत बड़ा है, जो भी कुछ सिखाते हैं समझाते हैं वो मनुष्य ही है, मनुष्य ही शिष्य बने हुए हैं, अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, फलाना सुनाते हैं। हमेशा शरीर का नाम लिया जाता है। भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, बोली आकर बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प सारी दुनिया जो पतित बन जाती है उनको पावन करने वाला एक निराकार बाप है। क्या एक ही निराकार बाप? दो कौन कह रहा है? ब्रह्मा ही पतित पावन, और तो क्या शंकर पतित पावन है? कहीं कहा है कि शंकर के थ्रू मैं पतितों को पावन बनाता हूँ? पतितों को पावन बनाने वाला जो है वो पतितों के संग में आएगा ना, कि बिना संग के रंग में आए अपना रंग करा देगा। दुनिया गिरी कैसे? संग के रंग से ही नीचे गिरी ना, तो चढ़ेगी कैसे? संग के रंग से ही चढ़ेगी। तो तुम यहाँ बैठे हो, जो बैठे हो तुम्हारे में भी कोई कच्चे हैं, कोई पक्के हैं। कच्चे हैं वो क्या समझेंगे? कौन पढ़ाता है वो समझेंगे, ये मनुष्य पढ़ाता है, ये अपनी मिक्स बातें करके बोलता होगा। और जो पक्के हैं वो क्या समझेंगे? निराकार गॉड फादर बाप पढ़ाए रहे, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी बने हो। अब देही अभिमानी इस जन्म में बनना है, तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है उनको परमात्मा बैठ समझाते हैं। परमात्मा देह अभिमानियों को बैठ नहीं समझाते हैं। समझाते किसको हैं? जो आत्मिक स्टेज में रहने वाले, रूहानी स्टेज में रहने वाले बच्चे हैं वो ही परमात्मा बाप की पढ़ाई पढ़ते हैं और उन्हीं को बाप पढ़ाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा कहती है आर्गन्स द्वारा कि मैं फलाना हूँ, परंतु आत्माभिमानी तो कोई है नहीं। बाप समझाते हैं जो इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे वो इस समय आकर के ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। मनुष्य हिरे हुए हैं, देह अभिमानी रहते परंतु देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला लेकर के पार्ट बन जाती है। ये है उनके आर्गन्स। अब बाप बच्चों को कहते हैं मन बनाम भव, क्या कहते हैं और कौन कहते हैं? क्या कहते हैं? मन मन मत मना भव, तीन अक्षर मिलाए तो बन गया मन मना भव, यानी मन को मेरे मन में समा दो। जब मन बाप के संकल्पों में समा जाएगा तो मन से कोई विपरीत संकल्प चलेगा क्या? ऐसा संकल्प चल सकता है जो संकल्प बाप पसंद न करता हो? नहीं चलेगा। तो जब संकल्प ही ऐसा नहीं चल सकता तो क्या वाचा और कर्मणा ऐसी हो सकती है जो बाप न चाहता हो? नहीं हो सकती। तो अब आप बच्चों को कहते हैं मन मनाभव, बाकी सिर्फ गीता पढ़ने से कोई राजभाग थोड़े मिल सकता है। क्या कहा? कोई कहे कि लिखी लिखाई गीता है छपी छपाई, तो हम पढ़ते रहेंगे और हम राजभाग प्राप्त करते रहेंगे? सो नहीं कोई प्राप्त कर सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि गीता किसके मुख से गाई हुई है? ऐसे भगवान के मुख से गाई हुई है गीता। गीता कोई वो नहीं होती है सच्ची गीता जो लिखी हुई होती है या छपी हुई होती है, उसको गीता सच्ची गीता नहीं कह सकते। वो कैसी हो जाती? वो हो गई झूठी गीता। सच्ची गीता कौन सी? जो भगवान बाप सन्मुख बैठ करके समझाते हैं। गीता का भगवान ज्ञान का सागर बाप कहते हैं। तुमने जो श्री कृष्ण भगवान वाच लिखा है, किसने लिखा है? तुमने किससे कहते हैं? है? किसने नहीं लिखा? लिखा किसने? तुमने। तुमने किसको कहा? जो सामने गद्दी पे बैठे उसने कहा। अच्छा, वो ही ये कहते हैं कि गीता का भगवान शिव है, और वो ही सामने गद्दी पे बैठने वाले कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है। वाह भैया, लेकिन वो कहा किसने? गीता का भगवान कृष्ण है ये किसने कहा? जो सामने गद्दी पे बैठे हैं, दुखरण भाई कह रहे हैं,
सामने गद्दी पे सामने क्लास में जो इंचार्ज,
जो क्लास में इंचार्ज बैठे हैं वो ही कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है। क्या भाई कौशल्या माता, ये कौन कहते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण है? शिव बाबा कहते हैं। तुमने कहा
है?
तुमने लिखा है शास्त्रों में? तुमने लिखा है माने किसने लिखा है? भक्त लोगों ने लिखा है। तुमने किससे कहा?
तुमने अपने बच्चों से कहा जिसमें प्रवेश किया।
तो कौन है अपने बच्चे? क्या कोई तो पहला कोई तो मुख्य बच्चा होगा 100% जिसमें प्रवेश हो?
प्रजापिता ब्रह्म।
प्रजापिता ब्रह्म मतलब दुख हरण वाली बात सही है? गीता का भगवान ज्ञान का सागर बाप कहते हैं। तुमने जो श्री कृष्ण भगवान वाच लिखा है तो तुमने किसने लिखा है? दुखरण भाई कौशल्या माता कहती प्रजापिता वाली सोल नहीं लिखा है।
हमने तो कहा ये कंट्रोलर जो सामने इंचार्ज लोग बैठे हैं वो कहे।
अच्छा अच्छा तो अच्छा 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 देखो दुखरण भाई ने थोड़ा संभाला। सादी बात कि सामने जो इंचार्ज वगैरह बैठते हैं वो पीछे तो कभी बैठते ही नहीं, वो तो हमेशा सामने ही बैठते हैं।
बाबा क्लास चलाएंगे पीछे कोई?
बाबा क्लास चलाएंगे तब। अच्छा तो ज्ञान है पूरा बताओ भाई। अच्छा पूरा पूरा मतलब ये विंध्या बताएगी। किसने कहा? तुमने माने कौन सी आत्मा ने कहा लिखा शास्त्रों में? ये कौन सी आत्मा ने लिखा?
वेद
व्यास। किसने लिखा? वेद व्यास। कहते हैं वेद व्यास भगवान जो थे वो तो बोलते जाते थे, और देह अभिमानी गणेश जी महाराज लिखते जाते थे। तो किसने लिखा भाई? यहाँ लिखने की बात है, हाँ बोलने की बात नहीं है। लिखा किसने? है? जैसे और शास्त्र हैं, तो शास्त्र कोई क्राइस्ट ने बुद्ध ने या नानक ने लिखे थोड़े ही, उन्हें तो बोले।
जगदीश कहिए एक बार,
अच्छा जगदीश जी ने बोला संस्कृत की गीता बोली है जगदीश जी ने
नहीं लिखा
लिखी मतलब वो गणेश जी हो गए। अच्छा बोली फिर कैसे ने
बोली तो चल रही है वो तो सही चल रही है और लिख दिया वो अंतर तो क्या बोली में बालकृष्ण का नाम उन्होंने डाल दिया।
हमारा मतलब ये है कि लिखा किसने
जगदीश व्यास ने
जगदीश व्यास ने लिखा और बोला किसने
बोली चल रही उसका उल्टा हाथ लगा के लिख दे तो उसके क्या
उल्टा हाथ लगा के लिख दे। अब ये मतलब नहीं उल्टा अर्थ के सीधा अर्थ लिखी हुई जो गीता है वो तो है ही उल्टे अर्थ वाली उसके तो उल्टे अर्थ हो ही गए। लिखा किसने और बोला किसने मुसीबत हो गई कौन बताएगा भाई है? ये लिखा किसने है? हाँ शिव बाबा ने बोली अब ब्रह्मा ने लिखी लेकिन ब्रह्मा बाबा कभी मुरली लिखते थे क्या है? हाँ ये कि शुरुआत में बाप लिखाते थे और ब्रह्मा बाबा लिखते थे तो लिखे हुए में कुछ न कुछ गलती हो सकती है और बोले हुए में परमात्मा बोलने वाला है तो उसमें कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं है। तो ज्ञान सागर बाप कहते हैं तुमने जो श्री कृष्ण भगवान वाच लिखा है परंतु कृष्ण में ये ज्ञान ही नहीं है। कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान मैं आकर के तुमको सुनाता हूँ कि आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार विकारों का अंत होने वाला है। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ इन बातों का ज्ञान कृष्ण में है ही नहीं। तो जब कृष्ण में ज्ञान ही नहीं है तो वो इन बातों को सुनाएगा कैसे? तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाया जाता है रात दिन का फर्क हो गया है। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है है? वो कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखाने वाला प्रवृत्ति मार्ग वाला होगा या प्रिंस होगा? प्रिंस को कहेंगे कि उसकी प्रवृत्ति है? है प्रिंस तो कुमार हुआ कुमार की प्रवृत्ति कैसी है? किसके संग होती कुमारी की प्रवृत्ति? अम्मा के संग है? दुनिया में भी ऐसे ही कह दिया है कि कृष्ण गीता का भगवान है। कृष्ण भगवान बनाए दिया और उसका गीता माता के साथ कनेक्शन जोड़ दिया प्रवृत्ति हो गई वो गीता पति भगवान हो गया। ले जुलम कर दिया कृष्ण बच्चे को गीता माता का पति बनाए दिया। बता तो मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। राजयोग सिखाने वाला प्रवृत्ति मार्ग का होगा या निवृत्ति मार्ग का? हठ योगी होगा हठ योगी निवृत्ति मार्ग बैठ करके सिखाते हैं और परमात्मा बाप आकर के प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान देते हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान देने वाला खुद प्रवृत्ति में होगा या निवृत्ति में होगा? खुद प्रवृत्ति में होगा ना क्योंकि बाबा तो मुरली में अक्सर कहते रहते हैं कि निवृत्ति मारे वाले गुरु बैठ करके गृहस्थी। हाँ जी तो कृष्ण में ये ज्ञान ही नहीं है। मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। जो सूर्यवंशी देवताएं थे उनमें कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान तो प्राय लोप हो जाएगा। प्राय मन बिल्कुल लोप नहीं होगा। सत्ययुग में भी बिल्कुल लोप नहीं होगा। ज्ञान माने कुछ न कुछ रहेगा। क्या रहेगा ज्ञान की क्या बात रहेगी? वहाँ एक तो आत्मिक स्थिति रहेगी आत्मा का ज्ञान हो गया। फिर माँ बाप का ज्ञान होगा। चलो माँ बाप का ज्ञान हो गया, माँ बाप का ज्ञान तो सारी दुनिया में सभी को होता है, है? जानवरों को भी माँ बाप का ज्ञान होता है, ये क्या बड़ी बात होगी? अरे जानवर ये जान नहीं जानता है चम्मच हमें दूध पीना है, है? हाँ तो फिर
अच्छी बुरी कर्म का ज्ञान
ना। माँ बाप का मतलब माई बाप जो होता है वो राजा ही माई बाप होता है क्या? सत्युग और त्रेता में भी प्रजापिता का चित्र तो रहेगा, जो भी राजा गद्दी पर बैठता है विष्णु का चित्र पीछे पीछे विष्णु का चित्र रहता है। तो सूर्यवंशी देवताएं थे, उनमें कोई ज्ञान था नहीं, ज्ञान तो प्राय लोप हो जाएगा, माने कुछ न कुछ थोड़ा सा रहेगा, बिल्कुल लोप नहीं हो जाएगा। वो चित्र तो सत्युग त्रेता के अभी भी मिलते हैं। ज्ञान तो है ही सदगति के लिए, सत्युग में दुर्गति कोई होती ही नहीं है। जब दुर्गति ही नहीं होती तो ज्ञान काहे के लिए, सदगति काहे से होगी? ज्ञान से होगी ना, अज्ञान से थोड़ी सदगति होती है। ज्ञान माना जानकारी, सच्चाई की जानकारी। तो अभी तो है ही कलयुग, भारत में पहले सूर्यवंशी 8 जन्म, फिर चंद्रवंशी 12 जन्म, एक जन्म अभी तुम्हारा ही सबसे अच्छा है क्या? उन 20 जन्मों में जो सत्युग त्रेता में होते हैं उनसे भी अच्छा जन्म कौन सा है? हैं? संगम युग का जन्म। संगम युग का भी कौन सा जन्म है जिसमें बाप सन्मुख दिखाई पड़े वो जन्म, या संगम युग में भी बाप कभी कभी लोक भी हो जाता है बुद्धि से, सामने बाप नहीं दिखाई पड़ता, साधारण मनुष्य दिखाई पड़ता है, तो उसको सबसे श्रेष्ठ जन्म उस समय नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ जन्म कब कहें? जब सन्मुख दिखाई पड़ता है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, जब बाप सन्मुख दिखाई पड़ेगा तो जरूर उसका आधार भी प्रजापिता ब्रह्मा भी सन्मुख दिखाई पड़े। यह है सर्वोत्तम धर्म। कौन सा धर्म? ब्राह्मण। देवता धर्म सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे। क्या कहा? देवता धर्म सर्वोत्तम धर्म क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जब देवता धर्म होगा शुरू तो विष्णु का राज्य शुरू हो जाएगा, उस समय शासन ये नहीं कहेंगे कि कोई ईश्वर की बात मानता है। बात किसकी मानेंगे उस समय से? जो राजा रानी होंगे उनकी बात मानेंगे। और अभी अभी तो जो बाबा के रूहानी बच्चे हैं, रूहानी स्टेज में रहने वाले, देह अभिमान में रहने वाले नहीं, वो किसकी बात मानेंगे? रूहानी बाप की बात मानेंगे। तो ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंचे है। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। आजकल बहुत सोशल वर्कर हैं, तुम्हारी है रूहानी सर्विस, और उन सोशल वर्कर की है जिस्मानी सर्विस, जिस्म की सेवा। हॉस्पिटल वगैरह में ऐसे बहुत मिलते हैं, रूहानी सर्विस एक की बार होती है पूरे कल्प में, आगे ये सोशल वर्कर आदि नहीं थे। क्या कहा? आगे मना कब? यज्ञ के आदि में भी ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ये सोशल वर्कर्स नहीं थे जो जिस्मानी सेवा करते हैं, और अब ब्राह्मणों की दुनिया में भी सोशल वर्कर्स हैं जो जिस्मानी सेवा करते हैं। मधुबन में भी सेवा करने वाले वर्कर्स कैसे होते हैं? सोशल वर्कर ही कहेंगे। खाना पीना उठना बैठना सोने आदि का प्रबंध करने वाले कौन हुए? जो सामान्य वर्कर्स हुए या जिस्मानी कहेंगे? क्योंकि ज्ञान तो एक बाप ही मधुबन में बैठ सुनाता है। सेवाधारी जो होते हैं वो तो सेवा सेवा करते हैं, आत्माओं की दुआएं लेते हैं। तो आगे ये सोशल वर्कर आदि नहीं थे, और अभी तो ये जिस्मानी सेवा करने वाले सोशल वर्कर भी हैं। राजा रानी राज्य करते थे, सचयुग में देवी देवता थे, तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। लक्ष्मी नारायण द्वापर में जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं। क्या कहा? वाम मार्ग में जाते हैं। वाम मार्ग मानो बायां हाथ, बायां हाथ को जाने वाला मार्ग। तो वो कौन सा मार्ग होता है? बायां हाथ और दायां हाथ विकारी निर्विकारी क्यों? बायां हाथ से क्या करते हैं और दायां हाथ से क्या करते हैं? बायां हाथ से क्या नहीं करते हैं और दायां हाथ से क्या नहीं करते हैं? बायां हाथ से तिलक नहीं लगाएंगे, बायां हाथ से कोई भी पुण्य कर्म अच्छा कर्म नहीं करेंगे। दान धर्म किसी को पानी भी पिलाएंगे तो किस हाथ से पिलाएंगे? सीधे हाथ से। तो दान धर्म सीधे हाथ से, अच्छे कर्म सीधे हाथ से, और सफाई आदि गंध आदि की सफाई डेढ़े हाथ से। तो देवताएं जब द्वापर में आए तो आकर के वाम मार्ग में गिरे। वाम मार्ग माने उल्टे रास्ते में, झाड़ में उल्टे रास्ते में उल्टे हाथ की तरफ जाने वाले धर्म कौन कौन से हैं? इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म वगैरह वगैरह। तो इन धर्मों में देवता वर्ण की आत्माएं जो है खिंच गई, आकर्षित हो गई, इनसे प्रभावित हो गई। और जो इनसे प्रभावित हो गए तो वो वाम मार्ग ही हो गए। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, प्रभावित भी धीरे ही धीरे होंगे कि एकदम प्रभावित हो जाएंगे। प्रभावित माना प्रजा, जो शक्तिशाली आत्माएं आती हैं उनका प्रभाव पड़ जाता है। तो जिनके ऊपर प्रभाव पड़ गया तो क्या हो गए? प्रजा हो गए। दूसरा पेज 27-291 की वाणी, वो है सर्व का सदगति दाता, तो उनको जरूर पूजा होनी चाहिए। जब पूजा शुरू होती है तो पहले पहले किसकी पूजा हो? जो सर्व का सदगति दाता है जरूर उनकी पूजा होनी चाहिए। शिव बाबा ने ही आत्माओं को निर्विकारी बनाया था ना, निर्विकारी बनाने वाला भी कौन? शिव बाबा। तो शिव बाबा की पूजा कैसे होगी? निर्विकारी बनाने वाली सोल कौन? सुप्रीम सोल, ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु को तो शिव बाबा नहीं कहेंगे, हैं? हाँ, कि शिव बाबा जो आत्माओं को निर्विकारी बनाता है वो कोई बिंदी बिंदी से नहीं मिलती है। कि बिंदी बिंदी से मिलती रहे और निर्विकारी आत्माएं बनती रहे, हाँ, बिंदु को याद करने से बुद्धि सूक्ष्म हो सकती है, बुद्धि में सूक्ष्म बुद्धि में ज्ञान की गहराई तो आ जाएगी लेकिन भावना भावना नहीं आएगी। तो दिमाग तो बढ़ जाएगा और बुद्धिमानों की बुद्धि बाप दिमागियों को पसंद नहीं करता, किन बच्चों को पसंद करता है? दिल वाले बच्चों, क्योंकि दिल है शरीर में और दिमाग है ऊपर बुद्धि, तो ऊपर वाला है बुद्धिमानों की बुद्धि। ऐसे थोड़े ही कहा कि दिल वालों का दिल, वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो जिसके पास जो चीज होती है ना, वो उसको उसकी उसे क्या कदर, वो तो है ही अपने पास, उसको कदर किस चीज की है? तो दिल नहीं, तो दिल वाले बच्चों की कदर। तो दिल होता है मनुष्यों के पास, तो मनुष्यों में जो सबसे बड़े दिल वाला बच्चा है या दिल वाले बच्चे हैं, उन बच्चों का सुप्रीम सोल बाप आधार लेता है शरीर का, तो उसको कहा जाता है शिव बाबा। नहीं तो वो सिर्फ आत्माओं का बाप है, बाबा बाबा नहीं। तो शिव बाबा ने ही आत्माओं को निर्विकारी बनाया था। फिर होती है देवताओं की पूजा, जब आत्मा निर्विकारी बन जाती है, तुम ही पूज्य थे फिर पुजारी बने। बाबा ने समझाया चक्र को याद करते रहो, सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट पर आकर के पड़े हो, अब तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, चढ़ती कला की निशानी क्या होगी है? कैसे समझें कि हमारी चढ़ती कला हो रही है या इनकी चढ़ती कला हो रही है या नहीं है? नहीं ना, बाप तो समझा ही रहे हैं, चढ़ती कला का मतलब ही है दूसरों का भला, सर्व का भला जरूर करेंगे, ऐसे नहीं एक का भला करेंगे एक का कल्याण करेंगे, एक के प्रति अच्छे संकल्प चलाएंगे दूसरे के प्रति खराब भावना रखेंगे, एक के लिए अच्छे काम करेंगे दूसरे के प्रति खराब काम करेंगे, नहीं। चढ़ती कला की निशानी ही क्या है? सर्व का भला जरूर करेंगे, सर्व शब्द जरूर लगा हुआ है, और किसी का बुरा बुरा नहीं करेंगे। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब चढ़ती कला करता हूँ क्या? हर आत्मा की ये स्टेज आनी जरूर है कि हर आत्मा दुनिया के कल्याण के कार्य में लगेगी जरूर, अपना कल्याण भूल जाएगी, दुनिया के कल्याण में लगेगी। पतित पावन आकर सबको पावन बनाते हैं, पावन आत्मा की पहचान क्या? पावन आत्मा जो है वो ही दूसरों को पावन बना सकेगी, सर्व का भला कर सकेगी, खुद ही पतित है, तो पतित तो पतित ही बनाएगी। जब सतयुग था तो चढ़ती कला थी और बाकी सब आत्मा मुक्ति धाम में थी। बाप बैठ समझाते मीठे मीठे बच्चों, मेरा जन्म भारत में ही होता है क्या? अमेरिका या रसिया या चीन जापान में नहीं होता, कहाँ होता है? भारत में ही होता है। शिव बाबा आया था, गाया हुआ है, अब फिर आया हुआ है। क्या गाया हुआ है? हाय भारत में भगवान, अब फिर आया हुआ है, फिर माना पहले भी आया था और अब फिर आया हुआ है। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस ज्ञान यज्ञ को क्या कहते हैं? राजस्व माना आत्मा की, स्व माने आत्मा, आत्मा की जो राजाई है कर्म इंद्रियों के ऊपर राजा ही पहली पहली वो राजा ही दिलाने वाला ज्ञान यज्ञ अश्वमेध। लेकिन वो राजा ही मिलेगी कब? जब आत्मा रूपी घोड़े को मन रूपी घोड़े को जो मोचन चले मेघ माना भस्म करेंगे स्वाहा करेंगे तो राजा ही मिलेगी। कर्मेंद्रियों के ऊपर जीत होगी। अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ अविनाशी क्यों कहा? क्योंकि और यज्ञ जो होते हैं वो तो थोड़ा बहुत टाइम चलते हैं फिर खलास हो जाते हैं, और ये यज्ञ तो तब तक खलास नहीं होगा जब तक सारी दुनिया को चेंज न कर दे। इस विनाशी संसार को भस्म न कर दे। जो अविनाशी सच्चाई वाली दुनिया है सच खंड वो ही रह जाएगा। चंचल मन बुद्धि वाली आत्माएं रहेंगी नहीं। तो स्वराज्य पाने के लिए ये यज्ञ रचा हुआ है। विघ्न भी पड़े थे यज्ञ में। क्या गाया हुआ है कि देवताओं के क्या पढ़ते थे? विघ्न पढ़ते थे वो असुरों के।
देवताओं के
हाँ असुरों के क्या विघ्न पढ़ते थे कि असुर इधर उधर से हड्डी मांस कचरा गंध ला करके फेंकते रहते थे। तो यहाँ तो कोई कचरा नहीं डालता भाई। यहाँ किसी ने कोई टट्टी पैसा फेंकी है क्या? है हाँ संकल्पों की बात है। कोई आसुरी आत्माएं होती हैं जो व्यभिचार का कचरा जहाँ यज्ञ होता है उस यज्ञ कुंड में भी व्यभिचार का कचरा फेंकती रहती। बाप आया हुआ आप व्यभिचारी बनाने के लिए शिवालय बनाने के लिए वो शिवालय में भी आकर के ऐसे ऐसे संकल्प चलाएंगे जिससे वैश्यालय बने गंदे गंदे वाइब्रेशन छोड़ेंगे गंदे गंदे अर्थ लगाएंगे गीत भी बजाएंगे तो अर्थ कैसे लगाएंगे? हाँ व्यभिचार फैलाने वाले गंदे अर्थ। तो अब फिर बाप आया हुआ स्वराज्य दिलाने के लिए यज्ञ रचा हुआ है। विघ्न पड़े थे और अब भी पड़ रहे हैं। वो आसुरी आत्माएं अभी भी यज्ञ में विघ्न कचरा डाल रही हैं। माताओं पर अत्याचार होते कचरा डालेंगे तो सबसे पहले अत्याचार किसके ऊपर होगा? माता ही अबला है। कलयुग के अंत में अबलाएं कौन बनती हैं? माता है बेचारी अबलाएं बन जाती। उनमें इतना बल तो होता नहीं कि मुकाबला करें दुष्ट संकल्पों का। प्रभाव में आ जाती है फट। तो माताओं पर अत्याचार होते कहते हैं बाबा हमको ये नगन करते हैं हमको ये छोड़ते नहीं है बाबा हमारी रक्षा करो। कौन नहीं छोड़ते हैं? दुर्योधन दुशासन। ये तो नहीं कहा कि युधिष्ठर और भीम नकुल सहदेव हमको नहीं छोड़ते हैं। बाबा हमारी रक्षा करो। दिखाते हैं द्रौपदी की रक्षा हुई। कैसे रक्षा हुई? किस बात में नगन होने से रक्षा हुई? चीर खींचा। चीर किसे कहते हैं? शरीर रूपी वस्त्र को मनसा से खींचना। कोई ऐसी बाचा बोली जाए जिस बाचा से खींचना या कर्मणा कर्मेंद्रियों से खींचना। हाथ लगाए देना किसी को या कोई की आंख में आंख डाल देना। तो ये क्या हुआ? चीर चीर खींचना। किसने खींचा? दुष्ट युद्ध करने वालों ने दुष्ट शासन करने वालों ने ऐसा किया। तो द्रौपदी की रक्षा हुई, किससे रक्षा हुई है? द्रौपदी के पति से रक्षा हुई या पतियों ने रक्षा की?
नहीं
है? रक्षा किसने की? शिव बाबा ने रक्षा की। यानी वो कचरा जो पड़ रहा था अथरों का, उस कचरे से द्रौपदियों की रक्षा शिव बाबा ने की। ऐसा माहौल बाबा ने बनाया जो बाबा ने मुरली में बोला हुआ है कि पांडव भवन ऐसा किला बन जाएगा जिसमें कोई भी असुर प्रवेश कर न सके। जब प्रवेश ही नहीं कर पाएगा तो कचरा कहां से डालेगा? द्रौपदी की रक्षा हुई, फिर तुम 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, याद की यात्रा में रहते अपने को पवित्र बनाते हो। ऐसे नहीं कि रक्षा पहले या बाद में हुई और वर्षा पहले मिल गया। पहले द्रौपदी की रक्षा होगी फिर वर्षा मिलेगा, या पहले वर्षा मिल जाएगा फिर रक्षा होगी? है पहले द्रौपदी की रक्षा। पांडवों का मुख्य कर्तव्य क्या है? शक्तियों की रखवाली करना। शक्तियों में मुख्य शक्ति कौन है? द्रौपदी का यादगार कहाँ बना हुआ है? कंपन बना हुआ है। क्या यादगार बना हुआ है? द्रौपदी कुंड से जन्म लिया। प्रत्यक्षता रूपी जन्म कहाँ से हुआ? द्रौपदी कुंड से, कंपिल से। कहते कंपिल नगर में उनका स्वयंवर हुआ था। किसका? द्रौपदी का। स्वयंवरण किया था। किसने स्वयंवरण किया था? द्रौपदी ने। याद की यात्रा में रहते अपने को पवित्र बनाते हो, फिर विकार में गए तो खलास, एकदम गिर पड़ेंगे। क्या? चाहे मनसा से विकार हो, चाहे वाचा से विकार हो, चाहे दृष्टि का विकार हो, कैसा भी विकार हो कोई भी किस्म का, लेकिन उससे रिजल्ट क्या होगा? एकदम गिर पड़ेंगे। इसलिए अवस्था कैसी हो जाएगी? गिरी हुई। गिर पड़ेंगे का मतलब कोई हाथ पांव से नहीं गिर पड़ेंगे, हैं? अवस्था डाउन हो जाएगी। इसलिए बाप कहते हैं पवित्र जरूर रहना है। जो कल पहले बने थे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे। फिर कोई पवित्र रह सकते हैं, कोई नहीं रह सकते। क्या? यज्ञ कुंड तो है, उसमें कोई पवित्र रह सकेंगे, कोई पवित्र नहीं रह सकेंगे। मुख्य बात है याद की। याद करेंगे, पवित्र रहेंगे और सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो फिर पद ऊंच पाएंगे। विष्णु के दो रूप राज्य करते हैं। कौन से दो रूप हैं? विष्णु के दो रूप कौन से? लक्ष्मी नारायण। एक लक्ष्मी एक नारायण है। दो रूप लक्ष्मी नारायण का क्या मतलब हुआ? यानी संगम युगी लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्मा है और सत्युग में लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्मा है। चारों का कॉम्बिनेशन जो है भुजाओं के रूप में दिखाया गया। भुजा माने आत्मा, सहयोगी। तो विष्णु के दो रूप राज्य करते हैं ना, परंतु विष्णु को जो शंख चक्र दे दिया है वो देवताओं को नहीं था। और शंख बजाने की जरूरत किसको है? देवताएं शंख बजाते हैं क्या? हैं? ये तो ब्राह्मणों की बात है। स्वदर्शन चक्र ब्राह्मण घुमाएंगे, अपने आत्मा के 84 जन्मों का चक्र। देवताओं को तो 84 का चक्र याद ही नहीं रहेगा। लक्ष्मी नारायण को भी नहीं था। विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, उनको चक्र के नॉलेज की दरकार ही नहीं है। क्या हाँ वो तो आई पवित्र सूक्ष्म वतन में देवताएं कैसे हो? वो फरिश्ताएं कैसे होते हैं? पवित्र होते हैं। बात तो मूवी चलती है, मूवी मन बोलते नहीं है लेकिन इशारे से ही सारी बात समझ ली जाती है। ज्ञान को बोलने की वहाँ दरकार नहीं, वाइब्रेशन मात्र से ही एक दूसरे को भाषा को कैच किया जाता है। अभी तुम जानते हो कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं, वो है निराकारी दुनिया। अब आत्मा क्या चीज है वो भी मनुष्य नहीं जानते हैं। कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, क्या कि जो आत्मा है सो ही परमात्मा है। माने शंकर को ही शिव कह दिया। शंकर क्या है? शंकर आत्मा है कि परमात्मा है? तो आत्मा है। तो शूटिंग काल में जिस उसमें परमात्मा प्रवेश करता है, परमात्मा को तो देखा नहीं। देखा किसको? आत्मा को देखा, उसी के प्रभाव को जाना, तो आत्मा को परमात्मा कह दिया। लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं। आत्मा के लिए कहते हैं एक चमकता हुआ सितारा है। क्या वो क्या है? चमकता हुआ सितारा, ध्रुव तारा कह सकते हैं कि निश्चय पे अडोल रहे। बाकी ये नहीं कि वो कोई सूर्य है, है? जो प्रकृति के बीच रहते हैं, इन आंखों से देख न सके, बल कोई कितना भी कोशिश करे, शीशे आदमी में बंद करके रखे कि देखें कि आत्मा निकलती कैसे है। कोशिश करते हैं परंतु किसको भी पता नहीं पड़ता है कि आत्मा क्या चीज है, कैसे निकलती है। बाकी इतना कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, दिव्य दृष्टि बिगड़ उसको देखा नहीं जाता है। भक्ति मार्ग में बहुतों को साक्षात्कार होता है, लिखा हुआ अर्जुन को साक्षात्कार हुआ अखंड ज्योति है। ले अगर सितारा है तो सितारे तो दिन में दिखाई नहीं पड़ते और रात को ज्योति दिखाई पड़ती है। अर्जुन ने कहा हम सहन नहीं कर सकते, इतनी तीखी ज्योति है, क्या नहीं सहन कर सकते? प्रकाश है मतलब परमात्मा, परमात्मा में से इतना प्रकाश निकलेगा कि सहन नहीं कर सकेंगी आत्माएं है? कोई स्थूल रोशनी निकलेगी? हाँ, वो ज्ञान की तीक्ष्णता इतनी होती जाती है जैसे सूर्य तपता जाता है विनाश के पीरियड में, तो लोग सहन नहीं कर सकेंगे उस गर्मी को। तो ऐसे ही जो ज्ञान सूर्य है वो ज्ञान की रोशनी से तीक्ष्ण होता चला जाएगा। इतना तीक्ष्ण होगा कि देह अभिमानियों को वो रूप सहन नहीं होगा। बस 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 करो भगवान प्राइमा। हाँ, अर्जुन ने कहा हम सहन नहीं कर सकते। बाप समझाते हैं इतना तेजोमय आदि कोई रूप नहीं है, है? हाँ, जैसे आत्मा आकर के शरीर में प्रवेश करती है पता थोड़े पड़ता है। अब तुम भी जानते हो कि बाबा कैसे प्रवेश करके बोलते हैं। बाबा जब प्रवेश करके बोलते हैं तो कोई पता पड़ता है क्या? है जैसे गुलजार दादी में आत्मा आती है तो पता पड़ जाता है क्यों? नहीं तो आत्मा के प्रवेश करने से पता नहीं लगना चाहिए फिर। हाँ, कि वो सिर्फ आत्मा थोड़े ही है, सूक्ष्म शरीर का दुंब भी तो लगा हुआ है। तो सूक्ष्म शरीर जो होता है वो उसमें ताकत की महसूसता होगी, पावर होती है। शिव बाबा शिव ज्योति बिंदु वो तो बहुत हल्का फुल्का, उसमें सूक्ष्म शरीर का कोई हिसाब किताब तो है नहीं। तो तुम जानते हो कि बाबा कैसे प्रवेश करके बोलते हैं, आत्मा आकर बोलती है। ये भी ड्रामा में सारी नूद है, इसमें कोई के ताकत की बात नहीं। आत्मा कोई शरीर छोड़ जाती नहीं है, ये साक्षात्कार की बात है, वंडरफुल बात है ना। बाप कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूं, आत्मा को बुलाते हैं ना, आगे आत्माओं को बुलाए उनसे पूछते थे, अभी तो तमो प्रधान बन गए, अब क्यों नहीं आत्माएं बुलाते हैं? क्योंकि बुलाने वाले भी तमो प्रधान, और जिसमें प्रवेश करे वो ब्राह्मण भी तमो प्रधान। बाप आते ही इसलिए हैं कि हम जाकर के पतितों को पावन बनाए है? हाँ आएंगे तो कहते भी हैं 84 जन्म, तो समझना चाहिए कि जो पहले आए हैं उन्होंने ही जरूर 84 जन्म लिए होंगे। किसमें आएंगे? जो पूरे 84 जन्म लेने वाला हो, एक दिन भी कम नहीं। और ब्रह्मा सरस्वती के तो कितने 50 वर्ष कम हो जाते, तो पूरे 84 जन्म लेने वाले में आता हूँ। जो पहले आए हैं उन्होंने ही जरूर 84 जन्म लिए होंगे, वो तो लाखों वर्ष कह देते। अब बात समझाते हैं, तुमको स्वर्ग में भेजा था, तुमने जाकर राज्य किया था, तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था, राजयोग सिखाया था संगम पर। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग युग आता हूँ, काहे के लिए? तुमको स्वर्ग में भेजने के लिए। का ट्रेन से भेजते हैं या एक का घोड़ा गाड़ी आदि से भेजते हैं? याद की यात्रा से भेजते हैं। तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था, तो याद की यात्रा से भेजेंगे कैसे? क्या कभी याद की यात्रा में बैठ करके स्वर्ग में पहुंचे? कभी अनुभव किया?
बाबा की याद
से, हाँ बाबा की याद से कभी स्वर्ग में पहुंचने का अनुभव किया?
जहाँ होंगे वही बाबा स्वर्ग बना देंगे, रहेंगे।
अरे ये मनबुद्धि की स्टेज की बात बताई, कि मनबुद्धि की स्टेज जब ऐसी बन जाए कि जिसमें हमको सुख ही सुख महसूस हो, दुख की महसूसता न हो, तो जैसे बाप ने हमको ऐसा ज्ञान दिया जिस ज्ञान से हमारी मन बुद्धि की ऐसी सदगति हुई कि हम मन बुद्धि की ऐसी मेंटलिटी बना ली कि हम सुखी सुख अनुभव कर रहे हैं। इस दुनिया में सुख है नहीं, लेकिन ज्ञान के फोर्स से अनुभव करना। तो तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था, राजयोग सिखाया था संगम पर। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग युग आता हूँ। की कहा फिर युग युग अक्षर लिख दिया है, हैं? मैं आता हूँ कल्प के संगम युग, और गीता में क्या लिख दिया कि हर युग के संगम पर आता हूँ। सचिव त्रेता के संगम पर आए राम बन करके, हैं? कलयुग और सतयुग के संगम पर आए हिरण्यकश्यप, राक्षस का वध किया, हाँ नरसिंह अवतार लिया, द्वापर में आए कृष्ण बन करके, कलयुग में आए कलंकी अवतार बन गए, ऐसे लिख दिया। लेकिन बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, मैं आता हूँ कब हूँ? कल्प कल्प के संगम युग। इसका मतलब ये है कि हर युग की शूटिंग में 4 अवस्थाएं समाई हुई है, सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो, तो वो एक कल्प हो जाता है। तो उस एक कल्प के मध्य में जो दूसरा कल्प बैठता है वो संगम कहा जाता है। जैसे सतयुग की शूटिंग के अंत में 76 में विशेष रूप से परमात्मा बाप की ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्षता होती है कुछ ब्राह्मणों के बीच में, ऐसे 87 में 88-89 ये पीरियड भी जो नुदा हुआ है वो है त्रेता और द्वापर की संगम का, तो उसमें जरूर कृष्ण की प्रत्यक्षता होगी। ऐसे ही द्वापर कलयुग का संगम, विष्णु अवतरण, फिर कलयुगी कलंकी अवतार। तो युग युग अक्षर लिख दिया है, अभी तुम जानते हो हम सीढ़ी कैसे उतरते हैं, फिर उतरना ही है। अभी है चढ़ती कला, फिर उतरती कला, अभी यह है सर्व की चढ़ती कला। सब चढ़ जाते हैं, सब ऊपर में जाएंगे, फिर तुम आएंगे स्वर्ग में पार्ट बजाने के लिए। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, उनको कहा जाता वॉइसलेस वर्ल्ड। फिर देवी देवताएं बाम मार्ग में जाकर के सब विशेष होने लगते हैं, विशेष माना विषयी विकारी। यह था राजा रानी तथा प्रजा। बाप समझाते हैं, हे भारतवासी तुम वॉइसलेस वर्ल्ड में थे, अब है विशेष वर्ल्ड, अनेक धर्म है, बाकी एक देवी देवता धर्म है नहीं। जरूर जब न हो तब तो फिर स्थापना हो, कहे की देवता धर्म की स्थापना यहाँ ही करूंगा ना, कि सूक्ष्म बतन में जाके करूंगा, सूक्ष्म बतन में तो नहीं करेंगे। लिखा हुआ ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना किसके द्वारा, ब्रह्मा द्वारा, और द्वारा ही चला जाए तब तो रचना कैसे होगी। अरे जिस शरीर में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, ऐसे मुरलिंग बोले। ब्रह्मा तो जरूर चाहिए, ब्रह्मा ही नहीं होगा तो उसकी भुजाएं हजार भुजाएं काम कैसे करेंगी, ये भुजाएं अपने आप चलती रहेंगी कटिकट आई। हाँ तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे, पावन बन रहे हैं, टाइम तो लगता है ना, पतित से पावन कैसे बने ये कोई भी शास्त्रों में नहीं है क्या। हाँ न दुनिया भी शास्त्रों में है और न ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया के शास्त्रों में कि पतित से पावन कैसे बने, ये कैसे का जवाब कोई शास्त्र में नहीं है। भारत का धर्म शास्त्र है गीता, परंतु भारतवासी धर्मव्रत हो गए क्या, अपनी धारणा से ही नीचे गिर गए। जो असली धारणा थी उससे ही नीचे गिर गए, तो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए है। जब धर्म स्थापक कोई भूल गए तो जरूर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि शास्त्रों में बहुत ग्लानी कर दी है। किस बात की कन्वर्ट क्यों हो गए, क्योंकि शास्त्रों में भगवान की भी ग्लानी लिख दी, तो देवताओं की भी बहुत ग्लानी लिख दी। राम की सीता चुराई गई, कृष्ण को इतनी रानियां थी, अब बताओ राम भगवान होगा उसकी सीता कैसे चुराई लेगा कोई है। कृष्ण को इतनी रानियां थी, क्रिश्चियन लोग हिंदू धर्म वालों को ऐसी ऐसी बातें सुना करके अपने धर्म की महिमा करने लग पड़ते हैं। क्या करते हैं, ऐसा एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि अपना धर्म ऊंचा साबित कर देंगे, और हाँ और देवता धर्म की ग्लानी, तुम्हारे भगवान लॉर्ड कृष्ण ने इतनी रानियां रखी, हमारे पास तो ऐसी कोई बात नहीं होती, ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे। क्राइस्ट तो ऐसा था, ऐसी ऐसी बातें सुना करके क्रिश्चियन बनाए देते हैं है? क्रिश्चियंस की बात हो रही है कि क्रिश्चियंस जो है वो देवता धर्म की ग्लानी करते हैं और क्राइस्ट की महिमा करते हैं। हाँ तो बौद्ध भी एक ही लेक्चर से कितने को बौद्ध बना लेते हैं है? एक लेक्चर झाड़ा और ढेर सारे बौद्धि बन जाते, ढेर सारी प्रजा बन जाती, बुद्ध की बैठ महिमा करते। वास्तव में महिमा कोई की भी नहीं है, कोई धर्म पिता की महिमा है ही नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा की भी नहीं है। क्या कहा? कोई धर्म पिता की महिमा नहीं है, महिमा किसकी है? हाँ, अगर प्रजापिता ब्रह्मा में भी शिव बाबा न हो तो 63 जन्मों का ही नहीं कुछ करके दिखाया। क्यों नीचे गिरते गए? रामकृष्ण की भी आत्मा नीचे तो गिरती है ना, कुछ कर पाती है क्या? 5-4 वर्ष में क्या कर पाया? नीचे ही गिरते गए, सारी दुनिया नीचे गिरती गई, तो ऊंचे कब चढ़ते हैं? प्रजापिता और ब्रह्मा भी ऊंचा।